ओम शांति। आज हमारे बीच में उपस्थित है जिनके जीवन के अंदर त्याग, तपस्या और सेवा, त्रिवेणी संगम प्रत्यक्ष अनुभव होता है और साथ ही साथ सादगी, सरलता और निर्माणता जिनके जीवन में सदा ही झलकती रहती है। ऐसी हमारी आदरणीय प्यारी कृति दीदी जी का हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बचपन से ही ज्ञान में चलते हो, पूरे परिवार के साथ ज्ञान में चलते और करीबन 30 साल आपको हो गए बाबा की सेवा में समर्पित होके और 36 इयर्स हुए हैं बाबा की सेवा में समर्पित होते। और यूथ विंग जो हम सभी जानते हैं और विंग भी एक्टिव है, लेकिन यूथ विंग भी बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य कर रही है। तो यूथ विंग की ऑफिस का टोटल कारोबार आप संभालते हो, इतने बिजी होते हुए भी आज हमारे बीच में आप आ चुके हो। फिर से दीदी जी का हम स्वागत करते, सम्मान करते। और हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी कोर्स है, चाहे SML हो या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो या राज्यों शिविर हो, सब आप बहुरुखी से कराते हो और बेहद बाबा के घर में जब भी बुलावा आता है, यहाँ से बुलावा आया और आप हाजिर हो जाते हो। ऐसी हमारी बेहद सेवाधारी कृति दीदी आज हम सभी को आत्मनिरीक्षण कराएंगे। आदरणीय कृति दीदी।
थैंक यू बीनाबेन। हम सब ब्राह्मणों के लिए साधना और तपस्या, ये हम सबका श्वास है, ऐसा कह सकते हैं। भक्ति की परंपराएं कुछ और थी। ज्ञान में आने के बाद बाबा ने हमारी सारी संस्कृति को बदल दिया। संस्कृति में कौन कौन सी बातें होती हैं? जब किसी संस्कृति की हम बात करते हैं, देश की संस्कृति, विदेश की संस्कृति, संस्कृति की बात करते तो कौन कौन सी बात होती है उसमें? आचार विचार, बोलना चलना, रहन सहन, मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, उसका खाना पीना, लाइफस्टाइल, लाइफ सिस्टम, उसकी परंपराएं, बहुत सारी बात होती है। तो बाबा ने जब से हमें अपना बनाया या हम ब्राह्मण बने, तो अब हम ब्राह्मण संस्कृति को अपना करके चल रहे हैं और उसे हम सच्चा ब्राह्मण कह सकते हैं। साकार मुरलियों में कई बार बाबा कहते हैं कि मेरे बहुत सारे बच्चे हाफ कास्ट ब्राह्मण है। कैसे हैं? हाफ कास्ट माना अध कचरे। हाँ, उसे पूरा ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि जिसने बाबा की दी हुई संस्कृति को पूरी तरह अपनाया, जैसे कोई पहले देसी था, गांव वाला था, अगर उसको विदेश का असर लग जाए तो क्या होगा? उसकी सारी स्टाइल बदल जाएगी, बोलना चलना बदल जाएगा, ड्रेसिंग बदल जाएगा। होता है ना, पहले अपने गांव में कितनी मर्यादा वाले ड्रेस थे और अभी कितना बदल गया। और हम उस समय एक ही बात कहते हैं कि ये विदेशी हवा का असर दिखता है। तो जो असर आया वो दिखेगा ना, दिखे बिना रहता है। तो अगर हमने ब्राह्मण संस्कृति को अपनाया और अप्लाई किया तो वो असर हमारे में न दिखाई दे, ये संभव नहीं। अगर वो संस्कृति का प्रभाव और असर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कहाँ न कहाँ अभी तक भी मिसिंग है। नो डाउट हम बाबा का बनकर चल रहे हैं, हमें ज्ञान अच्छा लग रहा है, हम योग में बैठते हैं बड़ी शांति का अनुभव होता है। वो शांति भी दो प्रकार की है, एक है साइलेंस में बैठे बड़े मजे से आंख बंद करके बैठे, नींद भी नहीं कर रहे हैं लेकिन और कुछ चल भी नहीं रहा है बड़े मजे से। मैं आज सोच रही थी अभी अभी योग कराने आके बैठते ही कि हमें बाबा ने ऐसा लवलीन वाला योग तो नहीं सिखाया है ना जो आंख बंद करके हम अपने में ही खोए रहे। हाँ, अगर बाबा की याद वो योग में समाई है तो चेहरा चमकने लगेगा, चेहरे पर खुशी आ जाएगी, हमारी दृष्टि एकाग्र हो जाएगी। अभी तो कोई यहाँ देख रहा है योग में, कोई वहाँ देख रहा है, कोई यहाँ देख रहा है। संस्कृति क्या सिखाती है? अगर कोई योग कराने बैठा है, संस्कृति क्या सिखा रही है? दृष्टि से दृष्टि लो। अरे वो न सही, पीछे बाबा बैठा है, मेरी दृष्टि कहाँ एकाग्र होती है? संस्कृति, छोटी छोटी बात को याद करो। जितना जितना हमारे में ब्राह्मणपन दृढ़ होता जाएगा उतनी सारी निशानियां जीवन में आती जाएगी। अब आज हम अपने अंदर को झांकने के लिए बैठे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अपने आप को जरा शाबाश कर दो, बहुत अच्छे हैं। क्यों बहुत अच्छे हैं? भगवान की नजर हम पर पड़ी, इतनी बड़ी दुनिया में भगवान की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी, हम सब पर पड़ी तब तो हम यहाँ बैठे हैं। इतना ही नहीं, भगवान ने अपने कार्य के लिए हमको सिलेक्ट किया, हमारे में भगवान ने कोई विशेषता और खासियत देखी जिसके कारण भगवान ने अपने घर में हमको अभी तक बिठाया है। भगवान को हमारे में कोई ऐसा रोल दिखा होगा, कोई ऐसा पार्ट दिखा होगा जो उसके बेहद यज्ञ के कार्य में मददगार बनने बनाने वाला पार्ट होगा, इसीलिए हमको अपनी गोद में बिठा के रखा है। तो है हम बहुत अच्छे और बहुत स्पेशल। मेरे से अच्छा बाबा को कोई मिलेगा, मेरे से कम अच्छा बाबा को मिलेगा, लेकिन मेरे जैसा तो नहीं मिलने वाला, ये तो पक्की बात है। लेकिन इतना सब जानते हुए, इतना सब समझते हुए, कौन कौन समझते कि हमारा इतना अच्छा पुरुषार्थ चलता है जो हम हमारे पुरुषार्थ से 100% संतुष्ट हैं, वो हाथ उठाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अरे वाह, हिसार वाले तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थी है, वेरी गुड। अभी जरा सा ये सोच करके देखो, बाबा मुरली में समय अनुसार जो स्थिति बनाने वाली बात कह रहे हैं, क्या वो स्थिति के हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ? जिन्होंने हाथ उठाया अब उनमें से हाथ उठाओ। जैसी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा वो स्थिति मेरी बन गई है, बन गई है, तभी तो 100% संतुष्टता कहेंगे ना। बस यही कमी पड़ती है, जो कमी हमारे पुरुषार्थ में हमको आगे नहीं बढ़ने देती। हम ये समझ करके चल रहे हैं कि बहुतों से हम बहुत अच्छे हैं और बहुत जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। अगर मैं बहुत अच्छी स्पीड से चल रही हूँ तो मुझे और स्पीड बढ़ाने की या दूसरे आगे जाने वालों को देखने की जरूरत दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, हम अपने अंदर खुश रहेंगे कि हम बहुत, हमारी पहली मिसिंग यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ चेक मुझे ये करना है, साकार बाबा ने 36 में, 36 में बाबा की प्रवेशता हुई, 69 में बाबा ने संपन्न अवस्था को प्राप्त कर लिया, कितने साल हुए, 33। अव्यक्त पाठ को चलते हुए कितना समय हुआ, 15 साल। फिर भी पालना साकार में भी मिली, अव्यक्त में भी मिल रही है। साकार बाबा ने जो पुरुषार्थ किया और जैसा पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा वो पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाती, हमें आज गहरा जाकर ये चेक करना है। और जहां जहां अभी कमजोरी है, जहां जहां कमी पेशी है, इस कमी पेशी को मुझे इस भट्टी से भर करके जाना है। सबसे पहला प्रश्न, कागज पेन तो सबके पास है ना, ज्ञान में आने के बाद मैंने स्वयं के लिए, स्वयं का क्या कल्पना चित्र बनाया है। ज्ञान में आने के बाद मैंने स्वयं का, स्वयं के लिए क्या कल्पना चित्र बनाया है। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण बनने का, बाबा को भी मालूम है कि लक्ष्मी नारायण की गद्दी कितनी है, 8। आठ, उससे ज्यादा नहीं है। भले अव्यक्त बाप दादा ने बड़े प्यार और हुज्जत से कह दिया कि अगर तैयार हो जाएंगे तो बाबा लड़िया लगा देगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि लक्ष्मी नारायण फाइनल 8 जोड़ी बननी है। फिर भी बाबा ने हमें लक्ष्य क्या दिया, मुझे क्या बनना है, लक्ष्मी और नारायण। ये लक्ष्य से आकर्षित होकर हम बाबा के बने कि हमें इतना ऊंचा यहाँ बनना है। अब यहाँ किसी को 1 साल हुआ होगा, किसी को 2 साल हुआ होगा, किसी को 20 साल हुआ होगा, किसको 40 साल भी हुआ होगा ज्ञान में, ठीक है। अब अपने अंदर जाकर के देखो कि मैंने मेरा क्या कल्पना चित्र बनाए, मेरा संपन्न बनना माना वो क्या, मैं कैसी होंगी। अंदर चले जाओ और लिखो, मेरी संपन्न स्थिति जब होगी तो वो रूपरेखा क्या होगी, वो कैसा चित्र मैंने अपना बनाया है। मेरी संपन्न स्थिति की रूपरेखा क्या, गहराई में चले जाओ, इस पर सोचो और इस पर लिखो। जैसे आपको मालूम होगा, सुना होगा कि साकार बाबा जब एकदम अपने अंतिम दिनों में थे, बस संपन्नता की एकदम बॉर्डर आके खड़ी हो गई थी, तो बाबा संदेशी को भेजता था ध्यान में, और साकार बाबा संदेशी से चेक कराता था कि ऊपर वाले बाबा में और नीचे वाले बाबा में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाला बाबा बना संपन्न अवस्था वाला ब्रह्मा, ध्यान अवस्था में दिखने वाला ब्रह्मा बाबा माना एकदम संपन्न ब्रह्मा, और नीचे वाला जो ब्रह्मा था वो अभी तक संपन्न नहीं हुआ था। तो बाबा संदेशी को रोज भेजता था, चेक करो क्या अंतर है। तो संदेशी आकर के सुनाती थी कि बाबा ऊपर वाले बाबा में जितना लाइट माइट है उतना लाइट माइट अभी आपके पास दिखाई, बाबा चेक कराता था। संपन्न स्थिति और मेरी स्थिति में क्या अंतर है। अब आज मुझे ये चेक करना है कि मेरी संपन्न स्थिति क्या होगी, क्या क्या सोचती हूँ मैं अपनी संपन्न स्थिति के लिए, कैसी स्थिति होगी उस समय, मनसा क्या होगी, वाचा क्या होगी, कर्मणा क्या होगी, मेरी भावनाएं क्या होंगी, मेरा भाव क्या होगा, मेरी वृत्तियां क्या होगी, दूसरों के प्रति मेरी मनसा क्या होगी, क्या सोचती हूँ मैं सब अपनी संपन्न स्थिति के लिए। लिखो, ये लिखत हमको आगे चल के बहुत काम में आने वाली है। सैंपल तो दिया हुआ है ना रमा बाबा, अब सोचो और अपना चित्र बनाओ, डिजाइन करो। मेरे कर्म बंधन, मेरे कर्म संबंध, आपसी व्यवहार, दृष्टि वृत्ति, वो स्थिति क्या होगी। जी ओके, मेरी दृष्टि क्या होगी, मेरी वृत्ति क्या होगी, मेरी भावनाएं क्या होगी, मेरी मनसा क्या होगी, मेरे संबंध क्या होंगे, संबंधों के अंदर मेरा कैसा भाव रहेगा, ये सब बातों को गहराई से सोचो कि मेरी संपन्न अवस्था क्या होगी। माताएं पीछे से सिर्फ देख रही है, मैंने जो सुना वो समझा आपने, माताएं पीछे अगर समझा तो जरा हाथ उठाओ। ओके, हमारी संपन्न स्थिति के लिए आज पहले हम कुछ स्थूल बातों को चेक करते हैं। पहली बात किसी भी प्रकार के दर्द या बीमारी में शरीर अपनी तरफ मुझे खींचता है, अक्सर देखा है कि ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा तन की बीमारी होती है। अभी कल यहाँ आने से पहले सुबह में एक बहुत पुरानी ज्ञान में चलने वाली माता से मिलने गई थी। लंबे समय से बेड पर है और याद कर रही थी तुम्हें, मिलने गई उसको। मैंने पूछा बाबा याद रहता है, तो कहा बहन क्या बाबा याद रहेगा, सारा दिन कभी टांगों में दर्द है, कभी हाथों में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, रिसोर्स माइंड देखती रहती हूँ सारा दिन, लेकिन उसमें भी मन लगता नहीं है। कभी कभी कोई कोई प्रोग्राम बहुत अच्छा आता है तो देख लेती हूँ, बाकी तो देखो ना अभी खटिए पर हूँ। बहुत सेवा की है वो माता ने, बहुत सेवा की है। हमने अपने बचपन में, ज्ञान के बचपन में उनको सेवा करते देखा है, इतनी पुरानी माता है। लेकिन अभी बिल्कुल फा हो गई है स्थिति, देखो तो एकदम पाए पैसे की स्थिति हो गई है। क्यों? योग लगता ही नहीं है बहन, सारा दिन शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उठ नहीं सकती हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। उस समय मैं ये सोच रही थी कि देखो आज हमारी दादियां संपन्नता के नजदीक क्यों है। आज 100 साल की उम्र के बाद भी जानकी दादी को प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन मानसिक रूप से अभी अभी मैं 5-6 दिन पहले अहमदाबाद लोटस हाउस में दादी जी के सामने बैठी थी, बिल्कुल दादी जी को उठा करके बिठाया, हम लोग 2-3 लोग थे, जब उठाया तो ऐसा लगा दादी की इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग गए थे तो मिला रहे थे हमको। लेकिन जैसे ही दादी सामने बैठी, पहले लाओ टोली लाओ, एक नहीं बादाम भी खिलाई और कुछ फ्रूट भी खिलाया, फिर टोली भी खिलाई, फिर ब्लेसिंग कार्ड भी दिया, और उसके बाद फिर जरा सा दादी को अच्छा लगा और सुनाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ था ही नहीं। मैं दादी की वो अवस्था और स्थिति को देख रही थी कि कितनी बड़ी बात है, शरीर में कितना भी दर्द है, लेकिन सेवा सामने आई तो वो बात भूल गई। और ये मेरा एक का नहीं, जितने लोग गए दादी जी के पास सबका ये अनुभव है कि सुनाना शुरू करती है तो बस फिर कैसे भी बंद करना पड़ता है, इतना नशा दादी को सुनाने के समय आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बीमारी भी और दर्द भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। अब अपने अंदर जाके चेक करो कि जब मेरे पास छोटी मोटी बीमारी आती है तो मेरी अंदर की अवस्था, मन की स्थिति क्या होती है और क्या होनी चाहिए। तैयार कर रही है हम अपने आप को, लिखो। मुझे अपनी मन की स्थिति ऐसे समय पर, अभी क्या हो जाता है लेकिन क्या बना के रखना है। छोटे बच्चे एग्जाम्स देते हैं ना, उसके पहले उनको तैयार कराया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, करते हैं ना, गेस्ट पेपर सॉल्व कराते हैं। अब ये गेस्ट पेपर सॉल्व करने का हमारे लिए टाइम है, चेक कर। कल्पना करके देखो, मानो बीमारी आई, पता चला कि फलानी बीमारी मुझे हुई है और उससे खत्म होने में कम से कम 3-4 मास लगने वाले हैं। कंप्लेन आएगी, दिल्ली में अपनी एक बहन थी, बहुत साल पहले उसने शरीर छोड़ा, उसको कैंसर हुआ था, हम लोगों ने एक दिन उससे पूछा कि आपको कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई, मन में कुछ चला नहीं? बहुत अच्छी बात सुनाई उसने, बहुत सारी बातें सुनाई थी, लेकिन उसमें मुझे जो बात ने छू लिया मैं वो बात सुनाती। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के बहुत सारे बच्चों में बाबा ने मुझे इतना शक्तिशाली समझा कि इसके पास कैसी भी तन की बीमारी आएगी तो भी ये हलचल में आने वाली नहीं है, इसीलिए बाबा ने बीमारी मुझे भेजी है। कॉन्फिडेंस देखो अंदर का। मुझे ये चैलेंज स्वीकार करना है कि बीमारी का क्या भी स्वरूप आए वो मुझे कभी भी मन से हरा नहीं सकती। मेरे लिए ये चैलेंज है, ये उसके शब्द थे। और लास्ट तक उसने लास्ट दिन तक सेवा की, जैसे मम्मा ने लास्ट दिन हाथ भी नहीं चल रहे थे लेकिन बच्चों को अंगूर खिलाए। सुनिए ना ये सब कहानी कथाएं। मम्मा को कैंसर था और वो जमाने में कैंसर की इतनी दवाइयां नहीं थी। लास्ट दिन था जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा, लेकिन बाबा ने कहा कि आज मम्मा बच्चों को अंगूर खिलाएंगी। मम्मा के हाथ में दर्द, कोई बाजू में बैठा है, हाथ पकड़ रहा है, हाथ में रख रहा है, मम्मा उसको हल्के से दे रही है, आप सोचो कितना दर्द होगा। लेकिन बाबा ने कहा और मम्मा ने, ये है शरीर की बीमारियों पर जीतने वाली अवस्था। तो अपने लिए ये दो तीन बातें लिख लो, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, जिन दो तीन बातों के कारण आपको आपकी बीमारी कभी हरा नहीं सकती। आप तैयारी करो अपने। दूसरी बात, देह के संबंध, जो मेरे और बाबा के बीच में अभी भी मुझे आकर्षित करते हैं। मेरे और मेरे बाबा के बीच में बैरियर है, ऐसे कौन कौन से संबंध है? बहुत गहराई से चेक करो। इसकी टेस्ट बहुत सिंपल है। एक्सीडेंट हुआ, किसकी मौत का समाचार मुझे अभी भी द्रवित कर सकता है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चा, कौन सा संबंध अब भी मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है? बहुत ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपनी चेकिंग करना। इसका उपाय है। मिला किसी को कोई संबंध? मिला या नहीं मिला? कोई है अभी भी मेरे और मेरे बाबा के बीच में? डरो नहीं, कौन है ये मैं पूछने वाली नहीं हूँ, लेकिन लगता है अभी भी कोई कोई है बीच में। उसका उपाय है, अभी तक मैंने वो संबंध बाबा के साथ पूरा पक्का नहीं जोड़ा है, ये मिसिंग लिंक है। अगर कोई यहाँ कुमार बैठा है, कुमारी बैठा है, चेक करो बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है। बाकी सब बनाए होंगे, बच्चे का संबंध बनाया है? कौन कुमार बैठा है यहाँ? एक, दो, तीन, चार। बच्चे का संबंध बाबा से बनाए? जरूरी है या नहीं? अरे बच्चे का संबंध नहीं बनाया होगा आवश्यकता पर, जैसे गृहस्थी लोग होते समझते भाई बेटा है, कोई तो है संभालने वाला। अगर बाबा को बेटा बनाया होगा तो आवश्यकता पर वो बेटा साथ में आ करके, सामने रह करके आवश्यकता पूरी करेगा। तो सब संबंध बाबा के साथ मैंने जुटाए हैं, अगर कोई संबंध की अनुभूति में कमी होगी तो वो संबंध मेरे और मेरे बाबा के बीच में रुकावट है, बैरियर है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से चेक करके अपने पास अंडरलाइन करना। हम और आगे चलते हैं। अगर कोई मेरी बहुत महिमा करता है, बहन जी आज बहुत अच्छा क्लास कराए, भाई जी आज आप सेवा बहुत अच्छी करके आए, कोई मेरी बहुत महिमा करता है, उस समय मेरी फीलिंग क्या होती है? बाबा करा रहा है, होनी तो ये चाहिए, होनी तो ये चाहिए, क्या होती है? बहुत ईमानदारी से अपने आप से पूछो, वो सीन याद करो जब आप कोई सेवा करके आए हैं, आपने किसी से, किसी ने कोई कार्य सौंपा और पूरा करके आए हैं, आपकी बहुत महिमा कोई करता है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा तो और कोई कर ही नहीं सकता है, आपकी फीलिंग क्या रहती है? देखा कुछ तो मेरे में भी है। या उस समय ये फीलिंग आती है, बाबा थैंक्स, आपने जो कुछ कराया मेरे से, अगर निमित्त मात्र अगर अच्छा कराया, बाबा जो अच्छा हुआ, जो अच्छा कराया, इसको बाबा ने कवित्त मुरली में शब्द प्रयोग किया था, त्याग का भी त्याग। मेरी फीलिंग क्या हुई? मुझे अच्छा, चलो और कुछ नहीं फीलिंग आती है, वो सुनना मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इसका मतलब मैंने वो महिमा को स्वीकार किया। बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये, और यही हमारे योग को तोड़ने वाली बातें हैं। देखो इतनी सेवा करके आए हम, बहन जी को कुछ कदर भी है, फलाने की तो बड़ी क्लास में महिमा कर दी और हमको तो पूछा भी नहीं, क्या फीलिंग है महिमा सुनकर के अंदर? अगर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब अभी भी सूक्ष्म देह भाव गया नहीं है। उसी तरह अगर चार लोगों के बीच में मुझे किसी ने न कहने वाले शब्द कह दिए, अपमान कर दिया, अपशब्द कह दिया, मेरी फीलिंग क्या होती है? कहना था तो कोने में ले जाकर कहते ना, चार लोगों के बीच में क्यों कहा, मेरी क्या इज्जत रही? हाँ, अगर ये जगह में फलाना भाई या फलानी बहन होती तब तो वो कमी दिखाई नहीं देती, और मेरे लिए चार लोगों के बीच में कह दिया, ये अपमानित होने का भाव भी वास्तव में पूछो तो क्या है? ये भाव है। मानो किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया, उसकी वाहवाही होती है, उस समय मेरी फीलिंग क्या है? ये चेकिंग की बातें हैं। किसी की महिमा हो रही है, काम मैंने और इसने साथ में किया, इसकी तो बहुत वाहवाही हो रही है, मैं बाजू में खड़ी हूं। जनरली क्या होता है, एक सूक्ष्म ईर्ष्या का भाव उस समय आता है, वो भी देह भाव है। उस समय अगर ये मन में आया, इसको तो भगवान ने पता नहीं बहुत विशेषताएं दी है, मेरे पास अगर ऐसी विशेषता होती ना तो मैं भी बहुत कुछ कर लेती। लघुता ग्रंथी, उसके पास इतने अच्छे सर्कमस्टेंस है, अगर मेरे पास भी ऐसा होता ना तो बहुत अच्छा होता। ये भाव आना भी क्या है, देवान और देवभाव। सूक्ष्म में ये सब बातें आती होंगी, चलो समझ मिली उसको हम जल्दी ओवरकम कर लेते होंगे, लेकिन आती होंगी। जितना समय हम ये अवस्था में रहे देवभाव वाली, उतना समय हम योग युक्त रह सकते हैं, रह सकते हैं? योग युक्त स्थिति हो तो ये डाउन वाली स्थिति आ सकती है हमारी? ये सब देवभाव है। अब मैं एक मिनट चुप हो जाती हूँ, आप एक मिनट अंदर चले जाइए, इनमें से सूक्ष्म में भी किन किन बातों का प्रभाव मेरे पर आता है चेक करें, और आज से उस प्रभाव को निकालने के लिए मेरा पुरुषार्थ क्या रहेगा ये लिखें। देवभाव वाली हमने बहुत सारी बातें सुनी, ईर्ष्या भी देवभाव है, अभाव भी देवभाव है, महिमा का स्वीकार भी देवभाव है, ये बातें हमने सुनी। अब इनमें से कौन कौन सी बात मेरे पास आती है? खाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमारे में से कोई कंप्लीट नहीं है, किसको ज्यादा आती होगी किसको कम, लेकिन आती है। तो इनमें से कौन कौन सी बातें अभी मुझे आती है, और आज से इन बातों को खत्म करने के लिए मेरा क्या पुरुषार्थ रहेगा, वो पुरुषार्थ लिखना है। ये बात हम आप सभी जानते हैं कि एक दिन में जीरो होने वाला नहीं, लेकिन पुरुषार्थ क्या है? अगर मेरा लक्ष्य बन जाएगा इस बात पर, तो मानो आज ईर्ष्या वाली स्थिति मेरी 2 घंटा रहती है आज, लेकिन लक्ष्य बनने के बाद, अंडरलाइन बनने के बाद, मेरी समझ को मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगी कि हर एक का अपना पार्ट है, बाबा ने उसको वो पार्ट में एक्सपर्टाइज दी है, तो मुझे जो पार्ट मिला है मुझे अपना बेस्ट प्ले करना है, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाऊंगी। धीरे धीरे रिजल्ट क्या आएगा, वो ईर्ष्या जो कल मेरे पास 2 घंटा रहती थी, अब हो सकता है वो 10 मिनट के अंदर ये पुरुषार्थ। इस तरह से हम हमारी कमियों को धीरे 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 खत्म करते जाएंगे, ये पुरुषार्थ है। इसीलिए कहा कि लिखो क्या पुरुषार्थ करेंगे। मुझे डाउन भी नहीं होना है, अपने से कभी हारना थकना भी नहीं है, क्या करूंगी मैं। तो इसका मतलब मुझे रियलाइज करना है कि हम खराब है ऐसा नहीं है, अयोग्य ऐसा नहीं है, अभी मुझे थोड़ी और मेहनत करके अपनी योग्यता को, ये पुरुषार्थ। और छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में देंगे और उस पर विजय मिली ना, तो ज्ञान मार्ग में हम बहुत फास्ट आगे बढ़ जाएंगे। एक और छोटी सी बात को हम चेक करते हैं, क्या पुरुषार्थ और सेवा में कभी अलबेलापन आता है। हो रहा है, चल रहा है, कर ही तो रहे हैं, कितने संपन्न बन गए और हम रह गए, अलबेलापन हुआ ना। तो मेरे पास अलबेलापन पुरुषार्थ और सेवा में आता है, थोड़ा और अंदर जाओ, आता है तो कब आता है। मुरली क्लास करने जाना है आज, जरा पाँव में दर्द है छोड़ो, मोबाइल में मुरली पढ़ लेंगे, टीवी पे मुरली सुन लेंगे, ये क्या हुआ, अलबेला। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, सर्कमस्टेंस है, संजोग है, जब ऐसा अलबेलापन सेवा में और पुरुषार्थ में आता है। सेवा उसका नाम है जो कहा और किया। ऐसे बहुत लोग होते, बहन जी आपको कभी भी कुछ काम हो ना कह देना, लेकिन बहन जी जब कहेंगी ना तो कहेंगे बहन आज तो संभव नहीं है, और कभी हो ना तो बता देना। अगर ऐसा जवाब 3 बार कोई को मिलेगा तो मेरी बहन जैसी बहन जी तो कभी भी 4थी बार उसको पूछने नहीं जाएगी। होगा ना ऐसा, अलबेलापन आता है, आज करेंगे कल करेंगे, अरे सेवा तो हमेशा ही चलनी है, आज प्रदर्शनी है, इतने लोग जाने वाले, हम दूसरी बार प्रदर्शनी लगेगी तब चले जाएंगे, ये भी क्या हुआ। अरे हमने इतने वर्षों में बहुत पुरुषार्थ किया, इसमें बहुत होंगे जो पुराने भाई बहन होंगे, दिखती है कोई कोई की शक्ल कहाँ कहाँ बहुत बार देखा होगा, मधुबन में मिले होंगे, बाबा के टर्न में मिले होंगे, किसा के हो ऐसा पता नहीं होगा, लेकिन चेहरा देखा, बहुत पुराने भी होंगे इसमें से। इतने वर्षों तक तो हमने किया, अभी नए आए ना करे ना वो, कब तक हम ही करते रहेंगे। ये संकल्प भी क्या है सेवा में, साकार बाबा ने कभी ये संकल्प किया होगा, किया होगा। हमारी दादियों ने कभी ये संकल्प किया होगा। हमें फॉलो किसको करना है, जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक ये नहीं सोचा कि कब तक, तो हम क्यों सोचे कब तक। और यही सब तरीके हैं, निराश की बात है। मैं सिर्फ एक छोटी बात मिसाल के रूप में सुनाती हूँ आज। अभी 17 तारीख तक यूथ विंग का ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम था, 17 को ही यहाँ से गई हूँ मैं। लेकिन मुझे थोड़े दिन पहले ये कहा कि अभी हमारी उषा बहन जी भी बाहर है और शीलू बहन जी भी बाहर है इन दिनों में, और वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है तो शिविर का सेशन कराने के लिए जरूरत है, तो आप एक सेशन कराने के लिए आ सकती हैं। अब आप सोचो, अहमदाबाद से मुझे तो यहाँ आना था, 6:30 का सेशन था तो मुझे अगले दिन रात को आना था। एक सेशन की बात थी, ये सेशन तो हमारी बीना बहन के साथ बात के बाद में तय हुआ, क्योंकि मैं आने वाली थी तो तय हुआ। मैंने जो प्रोग्राम बनाया तो सिर्फ सुबह का एक 6:30 से 8 का एक सेशन था, वहां से वो सेशन के लिए अहमदाबाद से यहाँ। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए अच्छी लगी कि बाहर कितना भी करते इस बेहद महायज्ञ में अगर आवश्यकता है, वैसे तो कौन हमको बुलाने वाला है, जब सब है तब आवश्यकता है, और आवश्यकता के समय पर अगर मैंने मेरे लोकल के 10 काम छोड़कर के भी यज्ञ का जो पहला काम है उसको मैंने जस्टिफाई किया, वो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये अच्छा माध्यम बनने के लिए हमें धारणा बनानी पड़ेगी, इसमें अलबेलाई नहीं चल सकती है। अरे हमें, मैं नहीं जाऊंगी तो कोई करने वाला नहीं है क्या, शिविर नहीं होगी क्या, अरे जो होगा वो करा लेगा कौन, अभी इतना आना जाना, इतना दूर ट्रैवलिंग तो करना पड़ता है ना। लेकिन देखो, मैंने एक बार जिगर से हाँ कर दिया, कोई बात नहीं, तो ये भट्टी चल रही थी, बीना बहन का फोन आया था किसी कारोबार के लिए, तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ, बोला तो फिर आप सेशन करा के जाएंगे, फाइन, तो मेरा तो और ही समय सफल हो गया ना। बाबा मीडियम को यूज करेगा, साधन का उपयोग करेगा, लेकिन वो कब करेगा, आवश्यकता पर। मैं सदा हाजी के लिए अपने आप को, मैं ये नहीं सोचूं मेरे से अच्छे बड़ी बड़ी बहनें अब मैं क्या शिविर कराऊंगी, क्यों सोचूं मैं ये। मुझे अगर बाबा के घर से बुलावा है, चांस है, तो जो भी आएगा बाबा कराएगा, मैं क्यों सोचूं मैं क्या कराऊंगी। मैंने कभी शिविर तो यहाँ बाकी से कितने भी भाषण किए, मैंने कभी मधुबन में आके शिविर नहीं कराई है, क्यों सोचूं मैं ये सब। ये सब अलबेलापन का रूप है, ऐसा कोई भी प्रकार का अलबेलापन हमारे लोकल स्थानों पर भी कभी भी हमारे पास साकार। बाबा की विशेषता क्या रही जिससे बाबा ने उनको पसंद किया, बाप का बुलावा या गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, कुछ नहीं सोचा। इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पसंद किया, समर्पण नेता थी। अलबेलेपन को खत्म करने की विधि क्या है, बुद्धि का समर्पण, बुद्धि का समर्पण। जो बाबा कहे, जैसे बाबा मुझे चलाए, मुझे अपना पर्सनल सुर नहीं बजाना है, मुझे वही सुर बजाना है जो बाबा चाहता है, यह है समर्पण। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। क्या योग में बैठते ही, क्या योग में बैठते ही मेरी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, क्या योग में बैठते ही मेरी बुद्धि एकाग्र हो जाती है। चेक करो अपने आप को, कौन सी बातें सामान्य तौर पर मुझे डिस्टर्ब करती है। देखो अपने अंदर, कौन सी बातें अभी भी योग में मुझे डिस्टर्ब करती है। दुनिया में भी ऐसा कहते हैं, खेल के समय खेल खेलो और पढ़ाई के समय खेल नहीं चलेगा और खेल के समय। कितना अच्छा गोल्डन चांस आप लोगों को मिला है जो इस मधुबन तपस्या भूमि में आकर आप बैठे। यहां भी अगर मैं एकाग्र नहीं हो सकती, इसका मतलब बुद्धि पर कोई ना कोई बोझ। कल जीवन कहानी लिखी, आज लिखना है। जब नहीं, जब से समझ आई, ब्राह्मण जीवन नहीं, जब से बचपन से समझ आई और मेरे स्मृति में है, हो सकते जाने अनजाने में भी कोई गलत काम हो गया हो, लेकिन वो खाता तो है ना दिल को। योग में वो बातें सामने तो आती है ना। कौन सी बातें मुझे डिस्टर्ब करती है? पास्ट की बात डिस्टर्ब कर सकती है, कोई बात की चिंता मुझे खाए जा सकती है जो योग नहीं लगने देती है। क्या है जो मुझे डिस्टर्ब करता है? क्यों एकाग्र नहीं हो जाती हूँ? एकाग्रता ये है, हम आकर बैठे, अपने को सेट किया कहीं भी, मैंने उस समय संकल्प किया बस अभी थोड़ा टाइम है और मेरा बाबा और मैं समा जाऊं। और इसकी निशानी तन और मन दोनों एकाग्र हो जाएंगे। अब देखो, कोई व्यक्ति कहीं पहाड़ी पर बैठा है और दूर दूर याद कर रहा है और अपनी कोई बहुत अच्छी लाइफ के किसी अपने संबंधी के साथ बीते हुए बहुत सुखद पल को याद करता होता है, खोया हुआ है। आप पीछे से उसको कंधा भी हिला रहे, अरे भाई भाई, लेकिन वो सुन भी नहीं रहा है। कितनी एकाग्रता होती है तन की और मन की, जो कान होते हुए भी उसको बाहर की बात सुनाई नहीं दे रही है, इसको कहेंगे मन और तन की एकाग्रता। या तो कोई आया तो भी देखेंगे, कोई उठा तो भी देखेंगे, कोई बैठा तो भी देखेंगे। वो टाइम पर गीत पूरा हो गया और भाई ने अगर व्हाइट लाइट नहीं की तो सब देखेंगे उसके ऊपर, ये भाई क्या कर रहा है, अभी तक व्हाइट लाइट क्यों नहीं हुई है। 6:30 बजे मुरली शुरू होने का टाइम होगा, 5 मिनट टीचर लेट आई या गीत में कुछ बजाने में प्रॉब्लम हो गई और लाइट टाइम पर नहीं हुई या बैठने वाला टाइम पर नहीं बैठा, उस समय हमारी स्थिति क्या होती है, क्या होती है? अरे पता क्या चले कोई आके बैठा है या नहीं बैठा, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे। जब मैं बुद्धि से मेरे बाबा के साथ बैठी हूँ, अगर 5 मिनट लेट ही क्लास शुरू हुआ, शुरू करने वाले की जिम्मेवारी है उसको टाइम पर पूरा करना है, और अगर मुझे टाइम नहीं है और टाइम पर पूरा नहीं होता है तो बाबा ने तो छुट्टी दी है ना, अपना कारोबार नहीं बिगाड़ो, डिस्टर्ब होने के बजाय उठ के चले जाओ, ये बेहतर है ना। लेकिन ये बातें अभी भी हम ब्राह्मणों को डिस्टर्ब करती है। तो ये हमारा योग हुआ। अब इसमें कमी क्या पड़ी, क्यों एकाग्रता नहीं है, क्यों भी बार बार और बातें आ रही हैं, इसका उपाय क्या? बाबा से संबंध तो जुड़ा, लेकिन जितना दिली संबंध जुड़ना चाहिए उतना दिली संबंध अभी तक कहाँ कमी है, कहाँ कुछ कम है उसमें। अब देखो परिवार के अंदर आप है, आपका हस्बैंड या वाइफ है, दो बच्चे हैं। अगर बच्चे आपके कहे में ज्यादा नहीं है, मनमानी कर रहे हैं और अपनी तरीके से चल रहे हैं, सामान्य तौर पर उसमें क्या माना जाता है? परवरिश में कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं कहेंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे। मानो परिवार का मुखिया है, बहुत घर से परेशान रहता है और घर में रहने के बजाय जास्ती समय वो बाहर रहना पसंद करता है, सामान्य तौर पर क्या माना जाता है? या मुखिया घर के साथ अपने को अटैच नहीं कर पाया है, या घर का कोई व्यक्ति उसे बांध नहीं पाया है, ऐसी बात कहेंगे? अगर संबंध में तालमेल नहीं जुटता है तो कोई ना कोई एक पक्ष में कोई मिसिंग है, कमी भी नहीं है, कुछ मिसिंग है। अब यहाँ बाबा की तरफ से तो कोई मिसिंग होने की संभावना है नहीं है? सोच रहे हैं, बाबा की तरफ से मिसिंग होने की कोई संभावना है या नहीं है? नहीं, तो बाकी क्या बचा फिर? नहीं बची, तब मुझे चेक कर लेना है कि अगर मैं और मेरे बाबा उसमें वो प्यार, वो लवली स्थिति, वो एकाग्रता, वो समा जाना अगर मेरे में नहीं आ रहा है, कौन सी बात बीच में है? अब आपकी बात तो आप ही जानते हो, तो उसको हटाएगा भी कौन, है ना? फिर भी अगर मन नहीं माने, अगर दिल भारी करता है तो बाबा को पत्र लिखने की आदत डाल दो, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, बाबा को पत्र लिखने की आदत बना दो। कोई भी बात आई, अगर उसको हमने बात आई खत्म कर सकते हैं बहुत अच्छा है, खत्म नहीं हुई मन को भारी करती है, योग में डिस्टर्ब करती है, फटाफट उठाओ कागज पेन लिखो, बाबा के पास स्वाहा करो। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि कोई भी बात अगर ज्यादा समय मन में रहती है तो वो स्वरूप और संस्कार में भरती है, इसीलिए मुझे वो बात को लंबा समय अपने पास रखनी, दे दो बाबा को, खत्म कर दो। एक बार में वो बात खत्म नहीं हो, दो बार, तीन बार, चार बार लिखो पत्र, सौंपो बाबा को। ये साइकोलॉजी कहती है कि अंदर की बात को अगर आपने बाहर निकाल दिया तो वही आधा हल्का हो जाएगा, माफ की तो बाद में बात है, हल्का हो जाएगा। तुरंत बाबा को पत्र लिखने की आदत डालो। अमृत वेला रोज 5 मिनट 10 मिनट योग के बाद अगर समय है तो उस समय लिखो। रात को सोने के समय बाबा कहते हैं चार्ट चेक करो, चलो मेरे से चार्ट वाली बात लंबा नहीं हो सकती है, बाबा को एक शॉर्ट एंड स्वीट पत्र लिखो, बाबा आज का पूरा दिन एवरीथिंग वॉज ओके, आपको थैंक्स, आज का पूरा दिन सब ठीक चला, जैसे चलना था चला, थैंक्स। हो सकता है इतना? इतना हो सकता है? और रात का अंतिम प्रहर सोने के समय हम एकदम लाइट अवस्था में हैं, तो अमृत वेला भी, क्योंकि रात को मैं बोझ लेके सोई नहीं तो सुबह उठते ही नया बोझ कहां से आएगा? हाँ, दिन में आ सकता है, जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया आ सकता है, लेकिन अमृत वेला ये संस्कार बनेगा। इसलिए इस बात को चेक करना। आज मैंने कुछ बातें सुनाई ज्यादा है, आपको चेकिंग का टाइम कम दिया है क्योंकि मुझे उसको एक्सप्लेन भी करना था, लेकिन आपके पास लिखक है। अभी भी आप लोग 2 दिन बची में है ना, तो इन बातों को जब भी समय मिले और गहराई से सोचना इस पर। बाबा की मुरलियों में हर बात का जवाब है। आज वो बातों को नोट कर लेना, कल कमाल देखना, बाबा मुरली में सब बातों का जवाब दे देगा। और यहां से भट्टी से मुझे अपने को गहराई से चेक करके अंदर से अपनी मन की स्थिति का परिवर्तन करके जाना है। बाह्य परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन मैं आत्मा यहां मधुबन घर में आई, उस समय मेरी जो मानसिक स्थिति थी, स्थिति के हिसाब से उसमें एक्स्ट्रा काफी कुछ खत्म करके मुझे यहां से एक स्टेप ऊपर उठ करके ये चेकिंग अपने अंदर ये दो दिनों में, चाहे अमृत वेला करो चाहे शाम को भी आपको चेकिंग का समय मिलेगा। इस बार जब ये बच्चियों की दिनचर्या बना रहे थे तो यही बात निकली कि क्लासेस तो बहुत होते हैं, अब क्लासेस को कम कर दो और उसके बजाय अपनी चेकिंग को हम थोड़ा इम्पोर्टेंस, इसीलिए रात को आपके लिए क्लास नहीं रखी हूं। रात का टाइम इतना बड़ा मधुबन घर है, शांति स्तंभ में बैठो, जो जगह आपको पसंद है बैठो और बाबा के सामने बैठ करके अपनी चार्ट चेकिंग, अपने को जहां थोड़ा कसौटी पर चढ़ाने की जरूरत हो कसौटी पर चढ़ा करके मुझे सेल्फ को रियलाइज करके, क्योंकि समय हमारे पास अभी पुरुषार्थ का बहुत लंबा, अगर जैसी बाबा चाहता है हमने अपनी स्थिति के प्रति अटेंशन नहीं दिया तो कल को समय पूरा होगा, पर्दा खुलेगा, आत्माएं हमारे पास लेने आएंगी, उस समय हम अपने में उलझे हुए होंगे तो हमारे भगत बिचारे हमारे से क्या लेकर जाएंगे। इसीलिए मुझे अपनी मन की स्थिति को अभी श्रेष्ठ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, एक रस बनाना है और एकाग्रचित बनाना है।
ओम शांति। सभी अपने आप में, अपने आप का निरीक्षण करने में खो गए थे। हम देख रहे थे, सभी एकाग्र होकर के सुन भी रहे थे और साथ साथ अपना निरीक्षण भी कर रहे थे। एक सहज स्वभाव बाबा के ज्ञान में आने के बाद तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन पहले और अभी भी थोड़ा सा ये रहता है कि हम अपना निरीक्षण कम करते हैं, लेकिन सहज भाव से दूसरों का हमारे से हो जाते हैं। लेकिन इस परिवर्तन भट्टी के अंदर, इस मौन तपस्या भट्टी के अंदर आज हम सभी ने कृति दीदी के पास से आत्मनिरीक्षण कैसे करना है, क्या करना है, मेरे अंदर क्या मिसिंग है, उस मिसिंग को मुझे कैसे भरना है, वो सारी बातें बहुत ही गहनता से समझी और अंदर हमने धारण की। तो उसके लिए हम सभी की तरफ से हमारी आदरणीय कृति दीदी जी का हम फिर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत दीदी आपका थैंक्स, आपने हमारे लिए थैंक्स, बाबा को तो कहेंगे लेकिन बाबा ने जो निमित्त बनाया आपको, तो बाबा के साथ साथ आप निमित्त आत्मा का भी हम तहे दिल से थैंक्स अदा करते हैं।